नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 67% बढ़कर 1,774.78 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी को 1,062.58 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी की ओर से जारी बयान के अनुसार इस अवधि में उसकी परिचालन आय 7.85% बढ़कर 16,739.97 करोड़ रुपए हुई थी। 2022 की इसी अवधि में ये 15,520.93 करोड़ रुपए थी। कंपनी की आय विवरण के अनुसार दिसंबर तिमाही में उसने सबसे अधिक एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया। समीक्षाधीन तिमाही में अल्ट्राटेक का कुल खर्च 2.88% बढ़कर 14,531.04 करोड़ रुपए हो गया। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी की कुल आय 7.87% बढ़कर 16,880.45 करोड़ रुपए हो गई। स्टील वायर निर्माता बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए 745 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए हैं। दस्तावेज के अनुसार IPO पूरी तरह से इक्विटी शेयरों पर आधारित है। इसमें किसी तरह की बिक्री पेशकश नहीं होगी। IPO के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के समक्ष बृहस्पतिवार को दस्तावेज दाखिल किए गए। IPO से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का समर्थन करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बंसल वायर इंडस्ट्रीज स्टील के तारों का निर्माण और निर्यात करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में राजकोषीय घाटे को भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रख सकती हैं। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने शुक्रवार को ये अनुमान जताया। दोफर सिक्योरिटीज ने एक टिप्पणी में कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को 5.9% पर लाने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में सफल रहेगी। ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषकों के मुताबिक हम चुनाव के दबाव के बावजूद केंद्र के राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% तक सीमित होता हुआ देख रहे हैं। इसके मुताबिक सरकार व्यय में कटौती करने के बजाय पूंजीगत व्यय के सहारे वृद्धि को गति देकर राजकोषीय घाटे को कम करने की अपनी रणनीति पर कायम रहने का विकल्प चुनेगी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि डिजिटलीकरण के दम पर संगठित अर्थव्यवस्था को मिले समर्थन ने एक तरफ कर राजस्व में उछाल और दूसरी तरफ सब्सिडी व्यय जैसे फालतू खर्चों को कम करके राजकोषीय गणित साधने में सरकार की मदद की है। सरकार पहले ही वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाने की प्रतिबद्धता जता चुकी है। इसके लिए हर साल इसमें क्रमिक कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। बोफर सिक्योरिटीज ने राजस्व प्राप्तियां 10.5% की वृद्धि के साथ 30.4 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। कर राजस्व में 10% और गैर कर राजस्व में 14% की वृद्धि के कारण ऐसा होगा। नए वित्त वर्ष में विनिवेश आय में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना भी इस टिप्पणी में जताई गई है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की ताज़ा बाजार उधारी 11.6 लाख करोड़ रुपए होगी। इस दौरान 3.61 लाख करोड़ रुपए की ऋण परिपक्वता को देखते हुए सकल बाजार उधारी 15.2 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रदेश में एक विशाल IT/ITES डेटा सेंटर में निवेश के लिए वेब वर्कर्स के साथ 10,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बृहस्पतिवार रात को जानकारी दी कि दावोस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। CMO के अनुसार निवेश प्रस्ताव में 1,500 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने बताया था कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच में राज्य ने 3,53,675 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।